السلام علیکم، ایک نئی ایپیسوڈ میں حسان خان شو کی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ بڑی ایک خاص ایپیسوڈ ہے. تھوڑی سی نہیں، اچھی خاصی لمبی ایپیسوڈ ہوگی یہ، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں میں خود کوئی بات نہیں کرنے والا، بلکہ میں آپ کو اپنا ایک فری لانسنگ کا ایک انٹرویو سنوانا چاہتا ہوں، جو کہ بہت ہی یوزفل ہے اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ہے. بے شک وہ 27 منٹ کا انٹرویو تھا، لیکن اگر میں اس کو ٹرم بھی کروں گا تو وہ پھر بھی 24-25 منٹ کی ایپیسوڈ تو لازمی بنے گی. تو اگر آپ کو فری لانسنگ میں انٹرسٹ ہے اور آپ کو تھوڑا جاننا ہے کہ میں کس طریقے سے فری لانسنگ کرتا رہا ہوں اور میرا کیا طریقہ کار ہے، کیا میں اسٹریٹجیز سمجھتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان شارٹ کہ اگر آپ فری لانسنگ میں انٹرسٹڈ ہیں اور میری اسٹریٹجیز کو جاننا چاہتے ہیں، تو میں نے ایک انٹرویو دیا تھا اپنے دوست کے چینل پہ، جس چینل کا نام ہے کرونیکل ٹیک. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ وہ چینل ہے، تو وہ سبسکرائب بھی کریں وہ چینل، اور اس انٹرویو کو غور سے سنیں اگر آپ کو فری لانسنگ کے متعلق کچھ جاننا ہے اور آپ کو کافی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن جاننے کو ملے گی. تو آپ سے بات ہوگی اس انٹرویو کے بعد.
السلام علیکم دوستو، کرونیکل ٹیک کی طرف سے ایک نئی ویڈیو. اس ویڈیو میں ہم انٹرویو لیں گے حسان بھائی کا. حسان خان جو کہ حسان خان ولوگز کے آنر ہے، یہ پاکستان کے ولوگر بلاگر اور ساتھ فری لانس رائٹنگ بھی کرتے ہیں. تو ان سے ہم کچھ کوشچن پوچھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے تاکہ باقی لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ فری لانس ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، چاہے میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ایف ایس سی میں آپ ہو، آپ فری لانس کر سکتے ہیں. آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ڈیزائننگ وغیرہ کام کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لڑکے ہیں جو کالج میں یونیورسٹیز میں نئے ایڈمیشن لیتے ہیں، ان کو ایک گائیڈ لائن مل جائے کہ فری لانسنگ کیسے انہوں نے اسٹارٹ کرنی ہے. حسان بھائی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ہمارے ساتھ، یہ کافی سالوں سے فری لانس میں، اور یہ مزید ہم ویڈیو میں جانیں گے اس سے. تو اپنا انٹروڈکشن کروائیے کچھ، اپنے بارے میں بتائیے.
آپ تو کافی کچھ جانتے بھی ہیں. تو بیسکلی میں بلاگر ہوں اور فری لانس رائٹر ہوں. بلاگنگ میں نے تقریباً 2 سال پہلے اسٹارٹ کیا، 2.5 سال پہلے. تو بلاگنگ میں میں آیا اس طرح کہ 2010 میں. اس سے پہلے بھی مجھے بلاگنگ کا پتہ تھا، لیکن بڑا کلیئر نہیں پتہ تھا. میں کر رہا تھا لیکن پیسے نہیں کما رہا تھا اس سے. لیکن 2010 سے میں نے بلاگنگ پراپرلی پروفیشنلی بلاگنگ اسٹارٹ کی. ایون کہ میں نے یہ مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ میں نے پرو بلاگر بننا ہے اور منی میکنگ کرنی ہے. مطلب اس کو پروفیشن کے طور پہ جو میں نے اڈاپٹ کیا وہ 2010 میں کیا. اس کے بعد بیسیکلی جب آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو آپ اس میں ایوالو کرتے ہیں کہ آپ سمجھ آتی ہے، آپ کو اپرچونیٹیز کا پتہ لگتا ہے. تو اسی طرح مجھے فری لانسنگ کا پتہ لگا 2012 میں. میں نے پریکٹیکلی 2012 میں اسٹارٹ کر دی تھی فری لانسنگ. تو بیسیکلی میں بلاگنگ میں ایک ایڈیشنل انکم اسٹریم ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یار اگر میں صرف گوگل ایڈسنس سے ارننگ کر رہا ہوں تو میں ایڈیشنل انکم اسٹریم کہاں سے لاؤں. تو جب میں نے یہ سوچا تو میں نے پھر فری لانسنگ کو اڈاپٹ کیا. تو اس طرح ایک ایڈیشنل انکم اسٹریم بھی آ گئی میرے پاس، میرے بلاگنگ کے علاوہ. بیسیکلی بلاگنگ کے ساتھ اس کو کہنا چاہیے کہ ایک ایڈیشنل انکم اسٹریم آ گئی اور میں ایک فری لانسنگ کی نئی دنیا میں انٹر ہو گیا.
آپ کا پیشن بھی ہے بلاگنگ کے ساتھ، آپ جس طرح؟
بالکل، میرا اصل پیشن بلاگنگ ہی ہے. بلاگنگ ہے اور جو فری لانسنگ ہے وہ اس کی ایک ایڈیشنل انکم اسٹریم ہے.
اور بلاگنگ کا کیا چکر ہے؟
بلاگنگ تقریباً 2.5 سال پہلے اسٹارٹ کی میں نے. میں نے جس کو ہم کہتے ہیں نا فور کاسٹ یا 4C، میں نے اس کو ایک طرح میں نے پریڈکشن کی کہ یار یہ ولاگنگ جو ہے نا یہ آگے جا کے بہت پاپولر ہونے والی ہے، خاص طور پہ جب یوٹیوب میں پاکستان میں یوٹیوب دوبارہ اوپن ہوئی تھی. تو اس وقت میں نے فوراً سے پہلے میں نے بلکہ اس سے پہلے ہی میں نے اسٹارٹ کر دی تھی ولاگنگ. اور وہی ہوا، ولاگنگ جو ہے ایک دم بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے پاکستان میں بھی.
تو پریڈکشن یہی ہے کہ لوگ آرٹیکل کی بجائے ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں. مطلب
ویڈیو جو ہے وہ بہت پاپولر ٹائپ آف کانٹینٹ ہے اور اس کو اگنور کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی آج کے دور میں.
آپ کو آج تک جو بگیسٹ چیلنج ہے آپ کے سامنے وہ کیا ہے؟ مطلب کوئی فیس کیا ہو جو آپ
دیکھیں، کوئی بھی کسی بھی پاکستانی فری لانسر سے اگر آپ یہ چیز پوچھیں گے نا کہ کیا چیلنجز ہیں، ملٹیپل چیلنجز ہوں گے. لیکن جو پرسنلی میں نے فیس کیا ہے وہ پیمنٹ ریسیونگ کا پرابلم کیا. پیمنٹ ریسیونگ سے مطلب کہ پے پال جیسے پاکستان میں نہیں ہے. پے پال ایک پیمنٹ سروس کمپنی ہے جو بہت سارے ممالک میں ہے لیکن ابھی پاکستان میں نہیں کام کرتی. وہ تو ہم پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن ریسیو کرنا ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے، فری لانسرس کے لیے، بلاگرس کے لیے. तो पेपैल का ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है और वो आज तक है वो प्रॉब्लम।
बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? मतलब बहुत सारे लोग अभी अगर आना चाहें फ्रीलांसिंग में तो उनके लिए पेमेंट का सलूशन कोई
आपको बेसिकली स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब स्ट्रगल का मतलब क्या है? आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए ज़ाहिर है आपको अपने क्लाइंट से उस तरह बात करनी है कि मेरे पास पेपैल नहीं है, मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है, मुतबादल ज़रिए क्या हैं पेमेंट रिसीव करने के। आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपना, उसके अलावा ट्रांसफ़र वाइज है एक कंपनी और एक है zoom.com, xxoom.com, वो आपको दुनिया भर में कहीं से भी आपको वो $5 लगते हैं, आपके क्लाइंट को $5 पे करने पड़ेंगे, आपको बैंक ट्रांसफ़र हो जाती है, वो बैंक वायर करती है बेसिकली कंपनी, तो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में आपके वो पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं zoom.com से।
आप जो अपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है तो इसमें जब आप घुसे मतलब फ्रीलांसिंग में जब इंटर हुई है तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी आप?
बेसिकली मैं फ्रीलांसिंग सच बताऊं तो मैं एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम बनाना चाहता था कि ब्लॉगिंग के साथ मैं बेसिकली जो मेरा ब्लॉग था उस वक्त एक मेरा ब्लॉग था वो मैंने सेल आउट कर दिया था $1,000 में। तो मैं चाहता था कि मैं सिर्फ अगर गूगल एडसेंस से अर्निंग कर रहा हूँ या एफिलिएट मार्केटिंग से कर रहा हूँ तो नई चीज़ क्या हो। देखिए अगर आप ब्लॉगर हैं ना तो आपको कॉन्स्टेंटली आपको काम करते रहना पड़ता है कि मैं कहाँ से और पैसे कमा सकता हूँ, मैं कैसे अपने ब्लॉग को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं क्या अपग्रेड करूँ, मैं कौन सा नया टूल इस्तेमाल करना स्टार्ट करूँ, मैं कौन सा नया प्लगइन वगैरह बाय करूँ। तो इसी तरह मैंने फ्रीलांसिंग को एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम के तौर पर अडॉप्ट किया और वो तजर्बा मेरा बड़ा कामयाब रहा। इवन जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की उसके बाद मैंने गूगल एडसेंस भी ऑलमोस्ट छोड़ दिया इस्तेमाल करना, एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दी, तो मेरा एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम मेन इनकम स्ट्रीम बन गई जो फ्रीलांसिंग थी।
सही, मतलब आप कहते हैं कि ट्रेंडिंग जैसे ट्रेंड चेंज होता है हमें ट्रेंड के साथ साथ चलना चाहिए, उसी हिसाब से मैं अपना जो चेंज करना होता है जो ब्लॉगिंग वगैरह है।
देखें
ब्लॉगिंग की तरफ लोग आ रहे हैं।
ट्रेंड बेसिकली जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो लोगों को फ्रीलांसिंग का पता भी नहीं था 2012 में, तो मैंने तो ट्रेंड से बहुत पहले चीज़ अडॉप्ट कर ली थी और ब्लॉगिंग भी मैंने ऐसे ही अडॉप्ट की है।
आप पहले व्लॉगर में से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो व्लॉगर थे आप
पहले में से नहीं चंद पहले दो चार थे, अब वो जो स्टार्ट वाले व्लॉगर्स थे वो तो खैर अब पता नहीं बना भी नहीं रहे, चले गए इधर उधर, लेकिन यह है कि मैं ही उनमें से लगा हुआ। लेकिन लोग ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग मुझे कहते हैं मैं फर्स्ट व्लॉगर हूँ, मैं फर्स्ट व्लॉगर नहीं हूँ,
फर्स्ट में से है कुछ,
हाँ चंद स्टार्टर्स में से।
अगर इंडियन और पाकिस्तानी फ्रीलांसर को कंपेयर करें तो आप किस तरह कंपेयर करते हैं इनको, मतलब कंपटीशन वगैरह जो है इसके हवाले से?
देखिए मैं तो कंपेयर नहीं करूंगा इंडियन और पाकिस्तानी मार्केट को, उसकी रीज़न है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे पेपैल ले लें, हम सबसे प्राइम एग्जांपल है पेपैल, हमारे पास नहीं है उनके पास है, उनके लिए पेमेंट रिसीव करना आसान है, हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और उनकी मार्केट बड़ी है, वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है हमसे, तो लेकिन ये मैं कंपैरिजन में नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा कि हेल्दी कॉम्पिटिशन है फ्रीलांसिंग की फील्ड में, वहाँ भी बहुत अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, यहाँ पे भी हैं, सब काम कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी मेरी वीडियोस पे या मेरे आर्टिकल्स पे आते हैं और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो दोनों तरफ जो है वो आई थिंक एक हेल्दी कंपटीशन है और अवेयरनेस बढ़ रही है।
ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में से आपको अच्छी कौन सी लगती है इसमें से, और इसका अगर कोई लोग इसमें आना चाहे तो ब्लॉगिंग अच्छी रहेगी या व्लॉगिंग अच्छी रहेगी उनके लिए?
पर्सनली मुझे तो ब्लॉगिंग पसंद है, लेकिन देखें कोई व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग मेरी वजह से कोई स्टार्ट ना करे कि यार हसान को ब्लॉगिंग पसंद है तो मैं भी शुरू करता हूँ ब्लॉगिंग, या मैं कह दूँ मुझे तो व्लॉगिंग ज़्यादा पसंद है। देखिए दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, दोनों कंटेंट क्रिएशन का काम है, दोनों कंटेंट क्रिएशन है, डिफरेंट टाइप्स हैं, एक में वीडियो है एक में रिटन कॉन्टेंट है। आपको अगर चूज़ करनी है ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग में से, आपने अपने माइंडसेट के हिसाब से अपने दिल से पूछना है कि आपको क्या चीज़ में मज़ा आएगा करके। अगर आप फैसला ना कर पाएं आप दोनों ट्राई कर लें, आप ब्लॉग भी लिखें आप ब्लॉग भी बनाएं, जिसमें आपको ज्यादा मजा आए आप वो चूज कर लें,
मतलब जो आप चीज आपको अच्छी लगती है वही करनी चाहिए।
बिल्कुल,
आप अक्सर कहते हो।
बिल्कुल, मैं इस पे बड़ा यकीन रखता हूँ इस बात पे।
आप फ्रीलांस फाइवर अपवर्क वगैरह पे काम करते हैं या फिर लोकल पाकिस्तानी मार्केट में काम करते हैं?
सरप्राइजिंगली मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता, मैं इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ, आप इंडिपेंडेंटली लोगों को शायद समझ ना आए कि इसका क्या मतलब है कि मैं अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहा तो मैं फ्रीलांसर कैसे हूँ, मैं कैसे फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैं इंडिपेंडेंटली जो बेसिकली मैं अपने आप को मार्केट करता हूँ अपने ब्लॉग के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। ये दो टूल्स हैं मेरे पास, एक मेरा अपना ब्लॉग है और एक सोशल मीडिया है। मैं इन पे टाइम देता हूँ, अपना ब्लॉग लिखता हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों को हेल्प आउट करता हूँ। तो उससे क्या होता है, अवेयरनेस डेवलप होती है मेरी प्रोफाइल की, लोगों को पता लगता है मेरी प्रोफाइल के बारे में। वो आते हैं मेरी प्रोफाइल चेक करते हैं, उस पर लिखा होता है मैं फ्रीलांसर हूँ। इसी तरह मैं अपने ब्लॉग के जरिए भी अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग पढ़ें, हर आर्टिकल के नीचे ऑथर बायो में मैंने लिखा हुआ है कि आई एम अ ब्लॉगर एंड फ्रीलांसर, तो वहां से लोगों को अवेयरनेस जाती है, अवेयरनेस क्रिएट होती है लोगों को,
वहां से आप क्लाइंट भी बन रहे होते हैं।
बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से बनते हैं।
नेक्स्ट हम आपसे पूछते हैं कि अगर कोई नया बंदा फ्रीलांस स्टार्ट करना चाहता है पाकिस्तान में, तो उसको आप गाइड कैसे करेंगे, मतलब उसके लिए?
अगर कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है तो देखें, सबसे पहले तो वो अपनी स्किल ढूंढ ले कि उसको क्या बेचना है, वो क्लियर हो उस मामले में, ये चीज सेपरेट हो गई, ये चीज फाइनल हो गई। उसके बाद उसने डिसाइड करना है कि मैंने प्लेटफॉर्म बेस्ड फ्रीलांसिंग करनी है या इंडिपेंडेंटली करनी है, जैसे इंडिपेंडेंटली मैं करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ईलांस पे, फाइवर पे, freelancer.com पे जाके करते हैं। तो आप ये दोनों जरा डिफरेंट चीजें हैं, आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरीके से फ्रीलांसिंग करनी है। मुझे प्लेटफॉर्म्स पे करना पसंद नहीं है, उसकी एक रीज़न है। उसी रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्रीलांसिंग का जो पूरा करियर है वो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हो जाए। कल को वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, इसका मतलब है मेरा फ्रीलांस करियर भी बंद हो गया उसके साथ साथ। तो मैं इसलिए ये मैंने 2012 में ये चीज़ सोच ली थी कि यार अगर मैंने ना इंडिपेंडेंटली करनी है तो आज ईलांस बंद हो जाए, फाइवर बंद हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा ब्लॉग है, मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, मेरा ट्विटर, मेरा फेसबुक, ये सारी चीज़ें हैं, मैंने वो उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम किया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मेरा ब्लॉग है, जिससे मैं मार्केटिंग वगैरह करता हूँ। सो मेन मेरा मार्केटिंग टूल है मेरा पर्सनल ब्लॉग।
तो नए लोग मतलब स्टार्ट में प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं, फाइवर वगैरह की तरफ?
कोई हर्ज नहीं है जाने में, अगर कोई जाना चाहे तो बिल्कुल जाए, लोगों के लिए वो आसान है। लेकिन आप दोनों चीज़ों को समझ लें, जो आपका आपका दिल करे, जो आपका दिल माने, आप उस साइड पे चले जाएं। अब प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म पे होती है बिडिंग, फाइवर के अलावा बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं कि जी, और आपके साथ कई दर्जन और लोग होते हैं जो बिड करते हैं आपके साथ साथ। एक प्रोजेक्ट है, एक उसने अगर एक बंदे ने, एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट डाला है उस पर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप बिड करेंगे कि मैं इतने में कर दूंगा, 10-15-20-25 और लोग करेंगे कि भाई हम इतने में कर देंगे ये काम, फिर उस क्लाइंट की मर्जी है वो किसको साइन करेगा। वो तो आपको मे बी 10 प्रोजेक्ट मिल जाए, मे बी आपको महीने में कोई भी प्रोजेक्ट ना मिले,
फ्रीलांस पे यही होता है।
तो अब मैं जिस तरह करता हूँ, मैं रिलेशन बिल्ड करता हूँ, कॉन्टैक्ट्स बनाता हूँ, अपना ब्लॉग लिखता हूँ, अपने सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ। तो मैं अपनी पर्सनल ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड करता हूँ कि भाई मैं ये करता हूँ काम, मैं ये बेचता हूँ, मेरी ये सर्विस है, मेरी ये स्किल है। तो मैं अगर जैसे मेरी स्किल है राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, तो मैं ब्लॉग लिखूंगा, मैं लिखता रहूंगा ब्लॉग, लोगों को मैं मतलब लोगों जब लोग आएंगे मेरे ब्लॉग पे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनको पता लग जाएगा कि ये फ्रीलांस राइटर है, इसकी ये सर्विस है, ये बेचता है। तो मैं इस तरह पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए अपनी मार्केटिंग करता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, कोई प्लेटफॉर्म पे जाना चाहे प्लेटफॉर्म से जाए, कोई इंडिपेंडेंटली करना चाहता है वो इंडिपेंडेंटली करे।
फ्रीलांस की दुनिया में रहते हुए जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है फ्रीलांस में या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही होती है, उनसे खुद को अवेयर रखना पड़ता है, तो आप कैसे खुद को अवेयर रखते हैं? मतलब
देखें, मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ इन्फ्लुएंसर्स को, प्रो ब्लॉगर्स को, दूसरे ब्लॉगर्स को, दुनिया भर के ब्लॉगर्स को, ट्विटर पे खासतौर पे, लिंक्डइन पे। बेसिकली किसी को फॉलो करना कोई वो उससे सारा काम नहीं हो जाता, आपको टाइम गुजारना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कंस्ट्रक्टिव काम करना है उस पर जाके। लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसके अलावा इन पे मैं कनेक्ट रहता हूँ इन्फ्लुएंसर्स के साथ, प्रो ब्लॉगर्स के साथ दुनिया भर के। और उसके अलावा जो मैंने बताया, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, ब्लॉग्स सब्सक्राइब किए हुए। एक और चीज़ है जो मैं आपको एडिशनल बताऊंगा कि मैं टूल यूज़ करता हूँ पॉकेट, ये है बुक मार्किंग टूल है। आपने कोई वेबसाइट पढ़ी, आपने आर्टिकल आपको नज़र आया, आप कहेंगे यार ये मैं बाद में पढ़ूंगा, आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं उस पॉकेट में। उसकी मोबाइल में ऐप हैं, आप ऐप यूज़ करें, आप ब्राउजर में उसको अपने बुक मार्क कर सकते हैं अपने अकाउंट में।
एक्सटेंशन है या कोई
एक्सटेंशन? इसकी एक्सटेंशन है जो आपके ब्राउजर में इंस्टॉल होती है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होती है और वो सिंक रहती है आपके अकाउंट से। मिसाल के तौर पे आपने एक व्लॉग देखा है, ठीक है, आप उसको सेव करना चाहते हैं, अपने बुक मार्क करना चाहते हैं अपने पॉकेट के अकाउंट में, आपने अपने उस पर ब्राउजर से आपने उसको सेव करना है, बुक मार्क करना है, फिर आपने वहाँ पे एक टैग ऐड कर देना है ब्लॉग का या ब्लॉगिंग। तो जितने आप फाइलें जितनी या जितनी आप वेबसाइट्स या वेब पेजेस या वीडियोस आप बुक मार्क करेंगे ना ब्लॉग में, तो वो ब्लॉग के सेक्शन में रहेंगी। तो इस तरह मैंने बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो ब्लॉगिंग से ब्लॉगिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग, फाइबर, सोशल मीडिया, तो मैं जो जो मुझे रिसोर्सेज मिलते रहते हैं मैं बुक मार्क करता रहता हूँ वहाँ पे।
तो ये मैं आज ही ट्राई करता हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा ताकि बाकी लोग
पॉकेट पॉकेट नाम है उसका।
जैसे कि अक्सर इंटरव्यूअर से पूछा जाता है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, कभी गाड़ी में आप फ्री बैठे होते हैं, कभी ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, जो फ्री टाइम होता है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं?
मतलब बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं, एक तो व्लॉग बनाता हूँ, वो मेरी प्राइमरी एक वो होता है फ्री टाइम में, व्लॉग बना लिया या पहले से कोई वीडियो स्केड्यूल की हुई है तो वीडियो बना ली, वो व्लॉग या वीडियो बनाता हूँ। उसके अलावा मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, स्टिचर ऐप है एक स्टिचर के नाम से, वो मैंने मोबाइल पे अपने इंस्टॉल की हुई है और डिफरेंट पॉडकास्टर्स को या डिफरेंट उस पर मैंने लोगों को फॉलो किया हुआ है, जब उनकी एपिसोड आती है और मेरे पास टाइम होता है तो मैं वो एपिसोड सुन लेता हूँ। तीसरी चीज़ मैं बुक रीडिंग करता हूँ और मैं बुक रीडिंग का फैन पिछले एक दो सालों में हुआ हूँ, तो बुक्स रीडिंग भी मैं करता हूँ। उसके अलावा फिर मैं जाहिर है अगर और ज़्यादा टाइम है मेरे पास तो फिर किसी का ब्लॉग पढ़ लिया या किसी की यूट्यूब वीडियो वगैरह देख ली, तो ये चार पांच चीज़ें होती हैं जो मैं करता हूँ।
तो आपके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ब्लॉग पर भी आपके दो तीन ब्लॉग हैं माशाल्लाह से, इसके अलावा आपके यूट्यूब चैनल है 4,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है उस पर, तो आपके ऊपर मुख्तलिफ कमेंट लोग कर रहे होते हैं, नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, तो आप जो तंकीद हो रही होती है आप पर उसको कैसे हैंडल करते हैं?
देखें, एक होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक होती है खाली क्रिटिसिज्म।
इसको तंकीद बराए इस्लाह होती है,
हाँ, तंकीद बराए तंकीद बिल्कुल होती है। तो जो खाली क्रिटिसिज्म है फॉर नो रीजन, उसको तो हम इग्नोर करेंगे, मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैं उस पर बेसिकली ये चीज़ मैंने सीखी है गैरी वेनरचक से कि अगर आपका कोई हेटर है वो आपसे बिला वजह की हेट कर रहा है, आपको आपका कॉन्टेंट उसको पसंद नहीं आ रहा, तो आपके दिल में उसके लिए ना एम्पथी हो, आपके लिए उसके आपके दिल में उसके लिए थोड़ा सा एहसास हो गया यार देखो ये मैं एक काम कर रहा हूँ और ये काम नहीं कर रहा इस वक्त, बल्कि अपने उस टाइम को क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है बजाय इसके कि कोई काम कर ले अच्छा। तो आपके दिल में थोड़ा सा एक तो सबसे पहले जब आप एम्पथी होगी आपके दिल में एहसास होगा उसका, तो आपको वैसे ही नहीं दिल करेगा उसको रिप्लाई करने का। और एक होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो उसको मैं इंजॉय करता हूँ, वो हेल्दी चीज़ है, आपके आपको पता लग जाता है कि ये बंदा तनकीद बराए तनकीद कर रहा है या तनकीद बराए इस्लाह कर रहा है, आपको पता लग जाता है क्रिटिसिज्म से। तो उसको जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है उसको मैं इंजॉय करता हूँ, वो मैं फीडबैक समझ के लेता हूँ, उस पर गौर व फिक्र करता हूँ, उस पर अमल करता हूँ और उस पर जो चीज़ें अमल करने वाली होती हैं वो मैं अप्लाई करता हूँ अपने काम में।
तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं काफ़ी देर से कर रहे हैं, तो कोई तीन ऐसी चीज़ें जो कि फ्रीलांसिंग में या ब्लॉगिंग में या व्लॉगिंग जो भी चीज़ें इनमें सक्सेस के लिए जो तीन चीज़ें एसेंशियल है वो कौन कौन सी?
सबसे पहली चीज़ जो है वो है क्लैरिटी, आपको क्लियरली पता हो कि आपने जाना किस साइड पे, आपने क्या काम करना है, आपने क्या बेचना है, आपने क्या सीखना है। ये नहीं कि आप ये भी शुरू कर दें, ये भी शुरू कर दें, ये भी शुरू कर दें, फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो क्लैरिटी सबसे पहले लाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी, आपको क्या करना है, आप वाकई करना चाहते हैं, आपने चाहे वो ABC से आप शुरू कर रहे हैं, आप स्किल चाहे सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्लियर हों। ये नहीं कि आप आपके दोस्त ने वो चीज़ स्टार्ट की हुई है तो आप भी कर दें, या आपके मेंटोर ने या आपके किसी टीचर ने ये चीज़ बताई है, इंट्रोड्यूस करवाया आपको, आप कह दें नहीं जी अब मैंने यही करना है। आपको अगर शौक हो तो 100 बिस्मिल्लाह आप करें, लेकिन आप जो है वो क्लियर हों उस मामले में। क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ पेशेंस, मैं हमेशा कहूँगा ये भी मैंने गैरी वेनरचक से सीखा है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे पेशेंस की इम्पोर्टेंस का जब पता भी नहीं ना था तब से मैं पेशेंट हूँ। मैं 2012 से 2012-13-14 मैंने ना कमाने वाली बात ही हुई है इन तीन सालों में। ये जो पहले तीन साल थे, आप लोगों को व्यूअर्स को भी सुन के बड़ी हैरानी होगी, कि बहुत ही मैंने टफ टाइम देखा है 12, 13, 14 व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी ऑनलाइन. बस बहुत वो टफ था, लेकिन वहां पे मैंने गिव अप नहीं किया. जैसे ही 2015 खत्म हुआ, सब चीजें चेंज हो गई मेरी. उससे पहले अगर मैं गिव अप कर देता 2012 में, 13 में, 14 में, जो कि बहुत टफ टाइम था, तो मैं फिर यहाँ तक ना पहुँचता, यहाँ पे ना बैठा होता आपके साथ, और बहुत सारे लोग मुझे जानते ना, मेरे शायद ब्लॉग भी बहुत सारे इतने मतलब चलते ना, या जो भी मैं आज हूँ, या जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्कल चल रहा है, एक एक ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड हुई हुई है, वो ना होती आज.
बिल्कुल.
और जो तीसरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर मेरे ब्लॉग पे या यूट्यूब चैनल पे कंसिस्टेंसी की बहुत लोग बात करते हैं कि यार मैं आपकी ब्लॉग से, आपकी कंसिस्टेंसी का बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपकी कंसिस्टेंसी को देख के बड़ा हैरान होता हूँ. अगर मैं सर्च करूँ ना अपने चैनल पे कंसिस्टेंसी का कीवर्ड, तो इतने सारे कमेंट्स निकलेंगे जो कंसिस्टेंसी की जिक्र कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे. और ये सिर्फ ब्लॉगिंग की हद तक नहीं है, ये मैं ब्लॉगिंग में भी बड़ा कंसिस्टेंट रहा हूँ. तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि कंसिस्टेंसी के बगैर गुजारा नहीं है. लोग क्या करते हैं, 10 वीडियोस बनाई, गिव अप कर दिया उसके बाद कि भाई कोई रिजल्ट नहीं आ रहा. मे बी 11वीं वीडियो से हर चीज़ चेंज होने वाली थी उनके लिए. लोग एक ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं होता, ख़त्म कर देते हैं, ब्लॉगिंग ही गिव अप कर देते हैं. तो मे बी आपको 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉग की बात कर रहा हूँ. ऐसे लोग हैं जो 10-15 ब्लॉग्स के बाद उन्होंने 11वां-12वां ब्लॉग बनाया, वो हिट हो गया बहुत जबरदस्त.
और
बिल्कुल कंसिस्टेंसी की एक आपको एग्जांपल दे दूं छोटी सी. रोवियो फिनलैंड की कंपनी है, फिनिश कंपनी है फिनलैंड की. उसने 51 गेम्स बनाई, मोबाइल गेम्स, जो कि फ्लॉप रही. 51 मतलब आपकी एक गेम फ्लॉप हो, आपकी दूसरी चीज फ्लॉप हो जाए, आपकी तीसरी प्रोडक्ट फ्लॉप हो, चौथी, पांचवीं, दसवीं, बीसवीं, आप गिव अप कर देंगे कि भाई ये चीज नहीं चल रही है. उन्होंने 51 गेम्स बनाई रोवियो कंपनी ने, और नहीं चली कोई गेम, फेल होते रहे वो. उन्होंने बनाई 52nd जब गेम बनाई, 52वीं गेम बनाई, वो पता कौन सी गेम थी?
एंग्री बर्ड्स.
और दुनिया की वो बहुत बड़ी गेम है, दुनिया की टॉप गेम्स में आती है, मोबाइल गेम्स में
ट्रेंडिंग पे जब आई थी, कितने डाउनलोड्स, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही थी.
देखिए उस गेम ने उस कंपनी की शक्ल ही बदल के रख दी है. आज दुनिया जानती है रोवियो क्या चीज है, बहुत बड़ी कंपनी है मोबाइल डेवलपमेंट के हवाले से.
बिल्कुल, ऐसे जो भी सक्सेसफुल हम देख रहे होते हैं बंदे को, उसके पीछे कहानी होती है. हम बस देखते हैं कि बस इसने दिन रात एक रात में कर ली होगी सक्सेस.
ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती. ये मैंने मुझे चीज समझ में आ गई. ये बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी यही चीज मानते हैं. जो एक गेम बहुत मशहूर हुई थी पोकेमोन गो, उसके फाउंडर से किसी ने पूछा कि आप ओवरनाइट सक्सेस आपको मिली है, आपको कैसा लग रहा है ये देख के? तो उसने कहा, मेरी बात सुनो, ये जो ओवरनाइट की तुम बात कर रहे हो ना, ओवरनाइट सक्सेस की, मुझे 21 साल लगे इस ओवरनाइट सक्सेस को हासिल करने में. तो हर चीज़ को टाइम लगता है, आपको पेशेंट रहना होता है. देखिए ये तीनों पॉइंट्स जो मेरे, मैं इस पे दिलो जान से यकीन रखता हूँ, क्लैरिटी हो, आप पेशेंट हो, और आप कंसिस्टेंट हो, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता. जब अगर आप इन तीनों चीज़ों का आपको पता है और आप जेन्युइनली इन पे यकीन रखते हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको पेशेंट रहना है, और आप क्लियर हैं उस मामले में,
तो मजीद बहुत सारे लोग व्लॉगिंग की तरफ और फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज होगा? पहले मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था, जो कॉलेज में लड़के पढ़ रहे होते हैं और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं कहीं होटल वगैरह पे जाके, उससे बेहतर चांस उनके लिए फ्रीलांसिंग है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये आपको साथ साथ आप एक कैरियर बन जाता है, तो आप इससे जॉब से बिजनेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. तो आप न्यू कमर के लिए आपको क्या मैसेज होगा इसके?
देखिए जो लोग फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनको सबसे पहले उनको अपने आप से पूछना है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, क्या चीज़ बेचना चाहते हैं. जो लोग भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, वो ये देख के स्टार्ट ना करें, या वो सर्विस वो चूज़ ना करें कि उनके दोस्त ने वो चूज़ किया, उनके कज़न ने वो चूज़ किया, या उनके मामू ने वो चीज़ चूज़ किया, तो वो भी वो चीज़ चूज़ कर लें. अब जिन लोगों को नया नया फ्रीलांसिंग का पता लगता है, किसी के ज़रिए पता लगता है, तो वो देख किसी को अगर उन्होंने देखा है कि एक बंदा वेब डिज़ाइनिंग कर रहा है एज ए फ्रीलांसर, तो वो समझते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो वेब डिज़ाइनिंग करने का नाम है.
बिल्कुल.
तो वो फिर चाहे उनका दिल करे या ना करे, वो ना बाय डिफॉल्ट एक डिसीजन ले लेते हैं कि हमें भी फ्रीलांसिंग में वेब डिजाइनिंग करनी है। अब आपने सबसे पहले अपने क्लियर माइंड से सोचना है कि आपको करना क्या है। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ लें, आपको किस चीज में मजा आता है, आप वो चीज चूज करके फ्रीलांसिंग करें। देखें ये टी शर्ट जो प्रिंटिंग है, आप ये भी एज ए फ्रीलांसर कर सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं। आप ये स्टिचिंग भी कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। आपको जस्ट पता हो, वो करना आता हो काम, आपको मार्केट का पता हो कि आपने कहाँ बेचनी है वो सर्विस, आपको आप बेसिकली इंटरेस्टेड हो उस चीज में, तो आप फिर वो चीज करें स्टार्ट एज ए फ्रीलांसर। तो मैं हर आने वाले नए फ्रीलांसर को यही कहूंगा कि देखें अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, किसी के कहने पे, किसी के सजेस्ट करने पे कि भाई यार ये काम कर लो बड़ा चलेगा फ्रीलांसिंग में, या ये चीज करके फ्रीलांसर बन जाओ। आप अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ के फ्रीलांसर बने।
सही, फ्रीलांसिंग मैंने फाइवर पे देखे हैं लोग, इवन के लोगों ने लगाई होती है गिग कि हम आपके लिए दुआ करेंगे आप हमें पैसे दें।
सही है,
मतलब तो कहने का मकसद ये है कि आप कोई छोटा काम भी कर सकते हैं। लोग थंबनेल डिजाइन कर रहे होते हैं, लोग फेसबुक पोस्ट तैयार करके दे रहे होते हैं, इस तरह के काम कर सकते हैं लोग।
कीवर्ड्स ढूंढ के देते हैं लोग।
ये कीवर्ड ढूंढना तो थोड़ा प्रोफेशनल काम हो गया, मतलब फेसबुक की एक पोस्ट डिजाइन करना ये काम भी हो रहा हो, कर रहे होते हैं लोग, इस तरह कर सकते हैं मतलब।
बिल्कुल कर सकते हैं, आप डिसाइड कर लें। आप देखें, आप अगर इस पूरे इंटरव्यू को दो तीन बार सुने, ये जो इंटरव्यू अगर लोग दोबारा देखें इसको, तो हमने कई जगह बात की है कि अपनी स्ट्रेंथ का पता हो आपको, और आप फिर प्लेटफॉर्म्स की हमने बात की है कि दो डिफरेंट स्टाइल हैं फ्रीलांसिंग करने के, आप या प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं या आप इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो आप ये क्लियर हो जाएं, ये नहीं कि आप इंडिपेंडेंटली भी कर रहे हो और आप प्लेटफॉर्म से भी घुस रहे हो, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप बीच में ही फंसे रहेंगे कि यार आपको इधर जाना है या इधर जाना है। तो आप दोनों तरीके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रहें एक चीज़ पे, चूज करके एक चीज़ पे आ जाएं, या प्लेटफॉर्म्स पे करें या फिर इंडिपेंडेंटली करें।
तो ओके आसान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया।
वेलकम वेलकम, मेरे लिए ऑनर की बात है।
और माशाल्लाह जिस तरह हमने टाइम लगाया यहाँ पे, मजीद डिस्टर्बेंस भी आ रही थी, फिर भी हमने मैंने बर्दाश्त किया इसका, उसके लिए मतलब इश्यूज के लिए सॉरी, लेकिन बहुत
नहीं, नो प्रॉब्लम। देखें अगर इस वीडियो से हमारे एक घंटा यहाँ पे देने से अगर एक दो लोगों को भी फायदा हो जाए ना, मेरा हमेशा विजन ये होता है मेरी वीडियो हो, व्लॉग हो, किसी एक या दो बंदे को अगर उससे फायदा हो या वो देख के मजा आए या एंटरटेन हो या कोई एजुकेशनल चीज उसमें डिस्कस हो रही हो, तो एक दो लोगों को भी अगर इससे फायदा होगा तो हम समझेंगे कि हमारे पैसे पूरे हो गए।
बिल्कुल, यही चीज होती है, यही पैशन होता है आपको यूट्यूब की तरफ लेके आता।
बिल्कुल,
ना कि लोग सोच रहे होते पैसे के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आपको पैशन ये होना चाहिए लर्निंग का,
लर्निंग का, करने का, एक्सपीरियंस करने का। जब आप एक चीज करते हैं आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं, आप अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं बेसिकली। सो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और इस अपने चैनल पे इंटरव्यू करने के लिए।
जी तो सुन लिया आपने पूरा इंटरव्यू, मुझे उम्मीद है कि आपने इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको मेरी स्ट्रेटजीज का पता चला होगा, और उसके अलावा आपने काफ़ी चीज़ों के मुतालिक पहली दफ़ा सुना भी होगा। तो अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस एपिसोड को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, और अगर आपने मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना है तो anchor.fm पे लाजमी सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर हज़ारों लाखों और भी पॉडकास्ट अवेलेबल हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुन सकते हैं आगे। इसके अलावा मेरी जो ये पॉडकास्ट है ये 9 प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है टोटल, जिसमें iTunes भी है, गूगल पॉडकास्ट भी है, Spotify भी है, इस तरह और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे ये पॉडकास्ट अवेलेबल है। आप जस्ट सर्च कर सकते हैं हसन खान शो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।